हूँ। एक दिन जनाब मेरी किस्मत बड़ी अच्छी थी माजी भाई, पहले तो इतनी बड़ी मछली आई, कम से कम एक फुट बड़ी मछली मेरे हाथ में आई, ठीक है। मेरे लड़के ने वो रहा करा दी, कहता इट्स अ वेरी स्मेली फिश, अगर ये मेरे घर में पक गई हमारे घर में तो एक हफ्ता स्मेल नहीं जाएगी, तो जी वो छोड़ दी। फिर कोई तीन चार बेवकूफ बच्चे, बड़े बेवकूफ होते हैं, बच्चियां पकड़ी गई मछलियों की। फिर एक ट्राउट पकड़ी मैंने, वो बड़ी थी, हथेली जितनी बड़ी थी, यानी हाथ से लेके छह सात इंच की फिश थी। खैर वो भी हमने छोड़ दी। तो मैं उसके बाद, मुझे मजा आया मछलियां पकड़ के, बहुत मजा आया, वो जो बाइट लेती थी ना तो वो फीलिंग बड़ी अच्छी थी। खैर रात को ना मैं अपने घर में आई, हाँ एक छोटा बच्चा ना मेरी जो मछली का एक बच्चा था ना, एक छोटी मछली आई। अब मैं उसका, इतनी बेवकूफ होती हैं छोटी मछलियां, वो पूरा का पूरा जो हुक है ना वो खा लेती हैं। खैर अल्टीमेटली वो थोड़ा सा उसकी उसका कोई पीस लगा हुआ था। पानी बड़ा पुरसकून था, मैं अपनी रॉड को पानी में छोड़ के, सो आई केम होम, ठीक है। मैं घर आई, घर आके मैंने अपना काम वाम मुकम्मल किया, एंड देन आई वेंट बैक एंड आई फेल्ट कि कोई बहुत बड़ी चीज फंस गई है, ठीक है। सो आई स्टार्टेड रोलिंग बैक एंड आई रोल्ड बैक, मगर वो जो चीज थी वो रेजिस्ट कर रही थी, वो रेजिस्ट कर रही थी। और फिर जब मैंने पकड़ा, मैं तो उसको लॉबस्टर कहती हूँ, तो मेरा बेटा कहता माँ लॉबस्टर बहुत बड़ी है, दिस इज नॉट लॉबस्टर, वो क्या होता है जिसके दो इतने इतने बड़े, और वो मुझे काटने के लिए आता था, वो बकायदा अल्लाह मियां ने दो हाथ ऊपर दिए, दो हाथ, हाँ केकड़ा बड़ा वाला, इतना बड़ा केकड़ा मैंने पकड़ा। पर पका नहीं सकती थी क्योंकि मेरे बेटे ने कहा हराम है माँ, क्योंकि इसको पकाने के लिए तुमको डायरेक्ट गर्म पानी में जिंदा डालना होगा, तो जब तुम जिंदा को गर्म पानी में डालोगी तो वो तो सी फूड तो तुम नहीं खा सकती। फिर देन आई हैड टू लेट इट गो।
तालिबान हमारे घरों में आ गए।
बहुत शुक्रिया हमारे स्पॉन्सर्स का, हम डॉक्टर नाजिया रहमान का जिक्र करना, ओ मैं पहले डॉक्टर नाजिया रहमान, अगर आपने टूथ वाइटिंग करना चाहते हैं, रूट केनाल ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, कैविटी फिलअप करना चाहते हैं, टूथ वाइटिंग के लिए डॉक्टर नाजिया रहमान डेंटिस्ट्री ऑन मिसेस सागा, नए और इमरजेंसी दांत टूट गया, इमरजेंसी में आपको जाना है तो यू कैन गो देयर। शी हैज टू क्लिनिक्स, 150 येलो एवंस बुलेवार्ड पे। अच्छा ODSPP है, या आप हेल्थ स्माइल एक्सेप्टेड है, अगर आपकी कम इनकम है, छोटे बच्चे हैं, यंग बच्चे हैं, आपका बच्चा यूनिवर्सिटी जाता है, दे एक्सेप्ट ऑल दीज पेशेंट्स, तो आप पहुंचिए डेंटिस्ट्री ऑन मिसेस सागर, डॉक्टर नाजिया रहमान 9058721100872 1100 उनका नंबर है। मैं आपके साथ जिक्र करना चाह रही थी, अल्लाह भला करे, कोई बड़ी अच्छी इम्पोर्टेंट बात बताने लगी थी,
शिराज शफीक का, कि वो अकाल मॉडल से काम करते हैं और हमारे साथ लाइन पर मौजूद
हैं। शिराज शफीक एंड साहब अकाल मॉर्गेज के साथ शिराज कहते हैं कि अगर मैंने आपका डॉक्यूमेंट मुझे जरूर देखने पड़ेंगे, और अगर एक बार आपको हमने यस कह दिया तो यू विल नॉट हैव स्लीपलेस नाइट्स टुवर्ड्स द एंड। शिराज शफीक, आप रब्ता कीजिए, आपने घर खरीदना है, आपने बिजनेस खरीदना चाहते हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, रीफाइनेंस करवाना चाहते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तक मॉर्गेज लेके देना, एड्डा थर्ड मॉर्गेज ना लीजिएगा, ना पार अपने तो पाने का की फायदा, चार दिन की जिंदगी, यहां फर्स्ट मॉर्गेज ले लें, सेकेंड थर्ड मॉर्गेज, इतना ना अपने आप को परेशान करें। अच्छा, और इसके अलावा लाइन ऑफ क्रेडिट्स के लिए भी आप रब्ता कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन लोन भी ले सकते हैं। तो शिराज, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू?
गुड आफ्टरनून जी, हम ओके, आरफा जी आप ठीक है?
आरफा जी तो एकदम ही सही, आरफा जी को क्या होना है, मगर
ये बच्चा मेरे तो दिल में कोई चीज रहनी है ना, कुछ दिल में है ही कोई नहीं, तो फिर है ही कोई नहीं तो मुझे तो हार्ट अटैक भी कोई नहीं होना, तो फिर मैंने तो बस अल्लाह करे खैर से, मैं तो कहती हूँ अल्लाह बहुत ही जिंदगी नहीं चाहिए, मैं किसी की मोहताज ना करी, किसी बंदे का मोहताज ना करी, आमीन सुम्मा आमीन। तो वैसे मैं बिल्कुल ठीक हाँ, हाँ माजिद भाई का हाल पूछा करो, क्योंकि इन्होंने एक गल लुकानी 99 झूठ बोलते ने, तो जेडे बंदे गल्ला ही लुकांदे रहंदे ने, लुकांदे रहंदे, तो फिर वो ते तुहानू पता ही है ना फिर की हुंदा।
खैर करे जी, माजिद भाई को वैसे ऐसी आदत नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं।
देखा, थैंक यू सो मच शिराज,
थैंक यू सो मच
शिराज जी, थैंक यू सो मच। नंबर शिराज का मैं आपको बता दूं 416-502-8000 इनका फोन नंबर है।
अल राशि वल मुर्तशी कुल्लुहुमा फिन्नार, बार वाले आप पे क्यों हंस रहे हैं?
क्या
वो कहते हैं कि शिराज ने माजिद जमाल की बस तारीफ कर दी थी, माजिद जमाल हम लेट हो गए।
ऑफकोर्स यस, उन्हें हकीकत बताइए। उन्होंने कुछ ऐसी एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं किया। शिराज शफीक जो है ही उन्होंने तो असल बात ना, असल असल।
अच्छा माजी भाई, मेरा जहन में ये था, जैसे मुझे अगर कोई बात कन्विंसिंग लगे ना, आई एम ऑलवेज कन्विंस। आप ना इतने पके हो गए हैं, इतने पके हो गए हैं, इतने पके हो गए हैं। अच्छा आप ना, दिमाग आपका इतना पका है, इतना पका है कि आपको कोई एक इंच आगे पीछे नहीं। वही मौलाना फजलुर रहमान की तरह।
नहीं नहीं, फजलुर रहमान तो आगे पीछे हुए थे, देखे ना, चार चार
नो, बिल्कुल आगे पीछे नहीं हुए, बिकॉज दिस इज व्हाट ही वाज प्लानिंग।
चार
नो, वो अपनी प्लानिंग के साथ चलते हैं, वो उस प्लानिंग पे आ रहे थे। ठीक है, उन्होंने पीटीआई से भी मुलाकात रखी, गवर्नमेंट से भी रखी, बिकॉज हिज प्लानिंग वॉज यार दो चार बाजार। आज का प्रोग्राम जरूर सुनिएगा, इसी पे हमने प्रोग्राम करना है कि व्हाई पीपल वांट टू बिकम गवर्नर, व्हाई पीपल वांट टू बिकम चीफ मिनिस्टर्स, व्हाई पीपल वांट टू बिकम द लीडर्स, एंड हम आपको साथ पाकिस्तान के फैक्ट्स शेयर करने लगे हैं। तो वो भी फजल रहमान साहब को भी पता था कि भी चार गवर्नरियां मिल जाएंगी, ठीक है जी, हम जो दे देगा हम उसके साथ लग जाएंगे। तो यू जस्ट लाइक दैट,
तो सारे पॉलिटिशियंस ऐसी होते हैं।
यू आर ऑल्सो लाइक
नो, मतलब मैंने कहा सारे
यू आर अ पॉलिटिशियन, दैट्स व्हाट यू कन्फेस, यू कन्फेस।
शिराज जी 416-502-8000 इनका फोन नंबर है। और शिराज अपने बारे में और अपनी कंपनी के बारे में बताएं इससे पहले कि मामला खराब हो जाए यहाँ पर।
बताना पड़ेगा इससे पहले कि हम भी पॉलिटिशियन बन जाए
इससे पहले। फरमाइए सर।
देखिए माजिद भाई, हम लोग अकाल मॉर्गेज वाले जो है वो पिछले 20-22 साल से मॉर्गेज इंडस्ट्री के अंदर हम लोग सोल्यूशन बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। किसी भी किस्म की सिचुएशन हो, अकाल मॉर्गेज अपने नाम और काम दोनों की वजह से जानी जाती है। आपको किसी भी किस्म की मॉर्गेज चाहिए, चाहे आपको कोई रेजिडेंशियल मॉर्गेज देख रहे हैं, या आपको कोई कमर्शियल मॉर्गेज चाहिए, या किसी किस्म की भी लाइन ऑफ क्रेडिट चाहिए, होम इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट चाहिए, या आपको कोई प्लान बन रहा है जी आप फ्यूचर के अंदर अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको कोई बिजनेस लोन चाहिए, या फिर आपको कोई इक्विपमेंट लोन चाहिए, तो इन सब चीजों के लिए आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लें जी, शिराज शफीक अकाल मॉर्गेज 416-502-8000। हेलो
जी, सॉरी मेरा माइक ऑफ था। बी लेंडर्स के बारे में कुछ बताइएगा, और बी लेंडर्स क्या होते हैं और कैसे उनसे डील किया?
जी माजिद भाई, बी लेंडर्स बेसिकली छोटे बैंक हैं जो कि बेसिकली फ्लेक्सिबल होते हैं एज कम्पेयर टू ए लेंडर। हमारे बहुत सारे बहन भाई जो किसी भी वजह से ए लेंडर पे अगर क्वालिफाई नहीं कर पाते, तो बी लेंडर जो है बेसिकली उनकी जो है ना वक्ती तौर पर फाइनेंशियल जो सर्विसेज है उनको पूरा करते हैं। लेट्स से कि अगर कोई बहन भाई हमारा क्वालिफाई नहीं कर पा रहा ए लेंडर पे क्रेडिट स्कोर की वजह से, या इनकम की वजह से, या उन्होंने कोई पास तो कंज्यूमर प्रपोजल की हुई है इसकी वजह से, तो हम अपने बहन भाइयों की जो सिचुएशन है उसको देखते हुए उनकी जो मॉर्गेज है बी लेंडर से करवा के देते हैं। लेकिन माजी में बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे बहन भाई जो जितनी एफर्ट ये करते हैं ना मॉर्गेज लेने के टाइम पे, इतनी एफर्ट ये रिन्यूअल के टाइम पे नहीं करते। ये क्या करते हैं, जो पेपर आता है उसी को या तो साइन करके भेज देते हैं, या ये खुद ही लैंडर को कॉल करना शुरू कर देते हैं।
ठीक,
अच्छा ये इतनी कोई अच्छी बात नहीं है, इसकी मैं वजह बता देता हूँ। कोई वजह क्या है, वजह ये है जी कि देखो जब हमने आपको मॉर्गेज लेके दी थी ना बी लैंडर से, तो वो उस वक्त की आपकी सिचुएशन के हिसाब से थी। उस वक्त आप किसी वजह से क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे, चाहे वो क्रेडिट स्कोर की वजह से थी, चाहे वो इनकम की वजह से थी। ठीक है, अब आपकी सिचुएशन चेंज हो चुकी है, आपका क्रेडिट स्कोर भी बेहतर हो चुका है, आपकी इनकम भी ठीक हो चुकी है। अगर आप उसी को रिन्यू करते जाओगे तो होगा क्या कि आपकी जो ज्यादा पैसे हैं वो जाएंगे इंटरेस्ट के अंदर, आपका प्रिंसिपल पे नहीं होगा, आपकी मॉर्गेज वहीं की वहीं खड़ी रहेगी। ठीक है, अगर और दूसरी बात यह है कि माजिद भाई बहुत सारे जो बहन भाई हैं उन्होंने क्या किया होता है, 10% उनके पास पड़ा होता है, 10% उनको प्राइवेट लेंडर से लेना पड़ता है, और 20% करके वो फिर भी मॉर्गेज जो है ना बी लेंडर से लेके बैठे होते हैं। बहुत सारे केसेस में माजिद भाई इन दोनों मॉर्गेजों को कंसोलिडेट करके हम लोग एक मॉर्गेज भी कर सकते हैं, पर अगर वो फर्दर क्वालिफाई करते हैं तो उनकी इस मॉर्गेज को हम लोग ए लेंडर पे भी लेके जा सकते हैं। हमने बहुत सारे केसेस में ये करके दिया है, आप अपने बहुत सारे पैसे सेव कर सकते हो इंटरेस्ट रेट की शक्ल में, लेकिन किसी भी वजह से अगर आपको मूव करने का फायदा नहीं ना हो रहा था, हम खुद ही आपसे कहते हैं कि यार आप उसी लैंडर पे रहो, हम कोशिश करते हैं उसी लैंडर से आपको अच्छा रेट लेके देने की, हम ये नहीं करेंगे कि जबरदस्ती उठा के आपको किसी और लैंडर के पास लेके जाए, ऐसा नहीं होगा। हमारी ये कोशिश होती है कि आपको अच्छी प्रोडक्ट लेके दी जाए, इसका आपको फायदा हो, आपको फायदा होगा तो आप इन फ्यूचर हमारे साथ काम करेंगे, लेकिन अगर आपको फायदा नहीं होगा तो आप दोबारा कभी भी हमें कॉल नहीं करोगे, हम कभी काम नहीं करोगे। इसलिए हमारी ये कोशिश होती है कि जो अच्छी प्रोडक्ट हो, क्योंकि हमारे पास 90 लैंडर्स की बकेट जो है ना माजिद भाई वो मौजूद होती है, इस बकेट के अंदर से जो अच्छी प्रोडक्ट होती है जिसका हमारे बहन भाइयों को फायदा होता है ना, हम बेसिकली वो सिलेक्ट करते हैं। जब हम लोग वो उसमें से सिलेक्ट करते हैं प्रोडक्ट तो क्लाइंट को ऑटोमेटिकली फायदा होना है, क्यों? क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी प्रोडक्ट सिलेक्ट करें, चाहे वो बी लैंडर की हो चाहे वो ए लैंडर की हो, हम लोग क्लाइंट के एंड पे रह के देख रहे होते हैं, हम लोग कभी भी लैंडर को प्रेजेंट नहीं करते, हमारी कोशिश होती है हम क्लाइंट को प्रेजेंट करें और इनको अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट लेके दें। हम लोग शॉप अराउंड करते हैं, उनको कहीं और नहीं जाना पड़ता, एक ही जगह से बैठ के हम लोग उनसे मल्टीपल लैंडर के साथ शॉप अराउंड कर रहे होते हैं, उनकी फाइल नहीं सेंड करते लेकिन शॉप अराउंड कर रहे होते हैं। उसका क्या फायदा होता है जी, 3-4-5 लैंडर्स का रेट आ जाता है आपके पास, आप अपनी मर्जी से जो प्रोडक्ट अच्छी होती है, जो लैंडर अच्छा होता है, उसके पास अपनी फाइल सबमिट करके क्लाइंट को अच्छा रेट और अच्छी प्रोडक्ट लेके दे सकते हो। ठीक है, तो मेरी ये सबसे रिक्वेस्ट है जी, अगर आप लोगों की रिन्यूअल आ रही है और आप अपना कोई सिनेरियो डिस्कस करना चाह रहे हो तो कॉल करो और अपनी ऑप्शंस को डिस्कस करो, हम लोग आपको गाइड फुल करते हैं, किसी किस्म के कोई चार्ज नहीं करते। मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल कर सकते हो, नंबर नोट कर लें जी, शहराज शफी का कॉल मॉर्गेज 416-502-8000
416-502-8000 जनाब शिराज शफीक साहब का फोन नंबर है, अकाल मॉर्गेज से मुंसलिक हैं, कोई भी सवाल हो आप जनाब शिराज शफीक से कॉल कर लें 416-502-8000। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।
ओके जी, थैंक यू जी, अल्लाह
हाफिज।
बहुत शुक्रिया माजी भाई, हमारे टॉप ऑफ द आवर, आई एम सो सॉरी, हम स्किप कर देंगे क्योंकि माजी भाई की टाइमिंग बड़ी कमाल की थी, तो वी आर ऑलरेडी 10 मिनट्स ओवर और जनाब आशिर अजीम साहब इंतजार कर रहे हैं, आई डोंट वांट हिम टू वेट। आशिर अजीम साहब किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आपने बेहतरीन पोजिशन के ऊपर काम किया और सिस्टम को इनसाइड आउट जानने की वजह से हमारी कोशिश होती है कि मैं और आप अक्सर औकात एक बहलावे में आ जाते हैं, और मैं आपको मजे की बात बताऊंगी कि ये बहलावा कैनेडा में भी है। बाज़ औकात हम लोगों की गाड़ियां देख के बिजनेस करते हैं, बाज़ औकात लोगों की लोग अपने आप को आके दोहरा रंग अपने ऊपर चढ़ाया हुआ होता है और हम समझते हैं कि मैं तुमको लाइफ टाइम वारंटी दूंगा और पता नहीं मैं क्या कर लूंगा, और उसी फ्रेब और फ्रॉड में हम आ जाते हैं। सेम वे एंड पॉलिटिशियंस अराउंड द वर्ल्ड, पाकिस्तान में बहुत से लोग, माइंड मत कीजिएगा मेरी बात को, मैं आपसे कहती हूं मेरे और आपके लिए अगर कोई चीज इम्पोर्टेंट है तो पाकिस्तान इम्पोर्टेंट है। स्टील मिल्स वॉज वेरी गुड, बट अनफॉर्चुनेटली जब हमने तुफैलियों को, पैरासाइट्स को उन जगहों के ऊपर नौकरियां देना शुरू की, तो वो ख्वाह स्टील मिल हो या पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस हो, तमाम चीजों का बेड़ा फर्क हो गया। मुख्तलिफ इदारे बिल्कुल बैठ ही गए क्योंकि वहां पर भर्तियां हुई थी सिफारशियों की, या भर्तियां हुई थी इस ग्राउंड के ऊपर कि कौन कितना पैसा लगाता है। मैं अभी ओपनली एक बात कहती हूं, जैसे बुजदार साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब आए, और मेरा ख्याल है अगर इमरान खान साहब उनको तब्दील कर देते प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उस वक्त के जनाब इमरान खान, तो शायद चीजें बदल जाती। आप में से कभी आज तक किसी ने पूछा कि फर्क होगी क्यों वापस नहीं आती पाकिस्तान में? बिकॉज हमारी जाती मोहब्बतें, फर्क होगी वॉज वन ऑफ द पर्सन एंड द डे इमरान खान तो रहेंगे जेल में, मुझे आज बल्कि इडियाला जेल के वो जगह भी आपको दिखाऊंगी जहां पे इमरान खान है। इट्स नॉट ओनली फॉर इमरान खान, ये तमाम की तमाम चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट है, इनकी डील्स हुआ करती होती हैं, दे आर नॉट टॉर्चर। जरदारी साहब जेल में थे तो क्या कमाल की जिंदगी गुजारते थे, हॉस्पिटल्स में ये जाते हैं तो क्या कमाल की जिंदगी गुजारते हैं, इमरान खान साहब भी, मियां साहब भी, इनमें से किसी ने कोई सख्ती नहीं झेली, जितने लीडर्स हमारे आप। हाँ, ये बिल्कुल आप याद रखिएगा कि आप और हम जब कॉलेज यूनिवर्सिटी में थे तो क्या होता था, वो लीडर्स दे नारे पे नारा लगा के माजिद जमा जैसे हमें बेवकूफ बनाते थे और हम भी नारे मार मार के, उसके बाद आ जाती थी पुलिस, ये सारे के सारे लीडर वहां से भाग जाते थे और वो जो नारे मारने वाले बेचारे पड़ाकू किस्म के बच्चे होते थे वो धर लिए जाते थे। एग्जैक्टली दिस इज व्हाट इज द पॉलिटिशियंस आर, दे मेक मनी, चाहे वो भर्तियां हो, चाहे वो केपीके में हो, चाहे वो सिंध में हो, चाहे वो पंजाब में हो, आई एम नॉट श्योर अबाउट बलूचिस्तान, प्रोबेबली सेम इन द बलूचिस्तान। आशर अजीम मेरे साथ है, मैं उन्हीं से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आशर अजीम साहब, आपका सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सर, आप टाइम दे देते हैं, थैंक यू वेरी मच।
आरफ जी, आपका शुक्रिया और आपके लिसनर्स का शुक्रिया, व्यूअर्स का, आप मुझे अपने शो पे बुलाया, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो।
So to have insight on few things, and you've been there, seen that. मुझे ये बताइएगा कि आज पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसके हवाले से, कि पाकिस्तान में भर्तियों के लिहाज से, क्योंकि एक हम प्रोग्राम प्रिपेयर कर रहे हैं और मेरा ख्याल था कि अभी उसको हमने स्क्रीन पे नहीं लेके आए, बट आई थॉट यू आर अ वेरी सूटेबल पर्सन, आपने बलूचिस्तान में भी काम किया है, आपने पंजाब में भी काम किया है, बलूचिस्तान में से पंजाब से शुरू कर लेते हैं कि अगर आपने एक भर्ती करनी है, आपने एक तहसीलदारी भर्ती करना है और उसके लिए भी पैसे, ब्यूरोक्रेसी हमारी जो है वो साथ नहीं देती, दे आर वेरी सेल्फिश एंड दे आर वेरी, क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं कि क्या फरमाएंगे आप, कुछ बताइए हमें, व्हाट इज इनसाइड, यानी बाहर से चमकते चेहरे, खूबसूरत वर्दियां, मगर अंदर के हकायक क्या है?
देखिए आरफा जी, बात यह है कि आप एक एक एग्जांपल से शुरू करता हूं जो कि मेरी हड भी थी। मैं जब कस्टम्स ज्वाइन की तो वो दौर था कराची में, आपको पता है कि कस्टम्स वैसे भी बहुत पावरफुल होती है, और वो दौर था कस्टम्स के एक्सट्रीम ग्लैमर का। तो ये मैं जाहिर बात कर रहा हूँ लेट 80s की, अर्ली 90s की। तो रात को एक जगह पे किसी एक पार्टी सी हो रही थी, उस पर मैं भी बैठा हुआ, तो मेरे साथ एक यंगस्टर था, कोई बिजनेसमैन था, बड़ा शौक चंचल सा इंसान था, तो मुझसे पूछता है, कहता है आप क्या करते हैं? मैंने कहा जनाब मैं कस्टम्स में हूं। बड़ा खुश हुआ, कहते ओहो यार आप तो जबरदस्त आदमी हैं, आप कस्टम्स में हैं। तो मैंने कहा जी, तो कहता है आप क्या हैं, पीओ हैं या अप्रेजर हैं? अच्छा, पीओ या अप्रेजर जो होता है, पीओ प्रिवेंटिव ऑफिसर होता है, जो एयरपोर्ट्स पे आपको नजर आते हैं, उन्होंने व्हाइट वर्दी पहनी होती है, दिस इज द फर्स्ट बेसिक रैंक, जो ऑफिसर्स वहां पे होते हैं हमारे, ये कोई ग्रेड 11 में होते हैं गालिबन। और इसी तरह अप्रेजर जो होता है वो होते हैं जो पोर्ट्स वगैरह पे होते हैं और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, वो भी कोई ग्रेड 11 में होते हैं। तो मैंने कहा यार नहीं, मैं असिस्टेंट कलेक्टर हूं, असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 17 में होता है, गैजेटेड पोस्ट है। तो वो बहुत डिसअपॉइंट हुआ मेरी बात सुन के, कहता है अच्छा आप असिस्टेंट कलेक्टर हैं, मैं समझा था आप अप्रेजर या पीओ। अच्छा, मुझे थोड़ी सी हैरत भी हुई, मैंने कहा मतलब ये तो आदमी बहुत डिसअपॉइंट हुआ सुन के कि मैं ग्रेड 17 में। तो मैंने कहा यार चलिए, तो आपको डिसअपॉइंटमेंट क्यों हुई? कहते जी देखें, आप मेरी बात माइंड ना कीजिएगा, लेकिन ये चार किताबें पढ़ के कोई भी अफसर बन जाता है। असल अफसर वो होता है जो कि पीओ और अप्रेजर्स होते हैं, वो आप नहीं मान सकते, वो उसके लिए खानदानी होना जरूरी है। अच्छा, मुझे उस वक्त तो उसकी बात शायद थोड़ी सी बुरी भी लगी और शायद समझ में भी नहीं आई, और चूंकि मैं जाहिल एयरफोर्स से आ रहा था तो एयरफोर्स में हमारा रैंक्स का और फलाने का बड़ा स्ट्रक्चर होता है, तो जाहिर ग्रेड 17 के अफसर और बाकी अफसरों में मतलब फर्क होता है कमीशनड ऑफिसर्स में और उसमें। तो लेकिन बाद में आई एब्सोल्युटली रियलाइज कि वो बिल्कुल ठीक कह रहा था। हम जो ग्रेड 17 एंड अबव के ऑफिसर होते हैं, अच्छा अब ये अजीब सी एक सूरत हाल है, ग्रेड 17 18 19 का ऑफिसर जनरली फील्ड का ऑफिसर होता है, और फिर जब 20 में और 21 में और 22 में आप पहुंच जाते हैं तो फिर आप जरा फील्ड से हट गए होते हैं, फिर आप कमांड लेवल पे होते हैं। और आपका जो फील्ड का अफसर है ना जी, जो सिविल सर्विसेज का फील्ड का अफसर है, वो रबर स्टैम्प है सिर्फ, जो नीचे से लिख के आएगा अप्रेजर से, प्रिंसिपल अप्रेजर से या पीओ से और सुप्रिंटेंडेंट से, उस पर आपने आंखें बंद करके रबर स्टैंप लगा के अपने दस्तखत कर देंगे। अगर आप उस पर कोई ज्यादा इधर उधर इतराज करेंगे तो आप बड़ी जल्दी सिस्टम से उठ के बाहर चले जाएंगे, क्योंकि वो ऊपर वालों आपको नहीं चलने देंगे। अच्छा जी, अब जो इसमें ये पूरी बात तमहीद बांधने का मकसद यह है कि इसमें आपकी बात का जवाब है। आपको थोड़ा सा इसमें ये बताऊं कि जी आपके उस दौर में, क्योंकि आप तो एफपीएससी के थ्रू आ गई अक्सर रिक्रूटमेंट्स एक सर्टन लेवल तक, मेरा ख्याल ग्रेड 11 ऑनवर्ड्स आ गई, लेकिन उससे पहले सारी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होती थी, मतलब पॉलिटिकल कागजों में तो पॉलिटिकल नहीं थी वो, मतलब मेरिट पे लोग सेलेक्ट होते थे, लेकिन असल में सारी की सारी आप वाकई ही, अगर मैं पीओ बनना चाहता तो मैं नहीं बन सकता था, ये बात उसकी एब्सोल्युटली ठीक थी। उसके लिए आपको किसी बड़े आदमी का बेटा होना या सन इन लॉ होना या भतीजा होना बिल्कुल एब्सोल्युटली जरूरी था, नहीं तो पाकिस्तान में आप इस तरह के स्ट्रक्चर पे, जो आपने तहसीलदार की भी बात की, आप जब तक कोई बड़े आदमी नहीं है या उसका इमीडिएट कोई रिश्ता नहीं है आपके साथ, तो आप ये पोजीशंस पाकिस्तान में नहीं ले सकते। तो अब आप ये देखें ना कि एक बंदा जो चार जमातें पढ़ के मेरी तरह का 17 ग्रेड में आ गया, और जो उसके नीचे वाले जो उसके सबॉर्डिनेट्स होते हैं वो तो खानदानी लोग होते हैं, अब वो तो मेरी ट्रांसफर बड़े मजे से करवा सकता है, और फिर अगर मेरे ऊपर वालों ने कोई स्टैंड भी नहीं लेना मेरे लिए, क्योंकि ग्रेड 20-21-22 वालों ने, तो फिर जाहिर है मैं क्या करूंगा मैं तो। सो आपकी बात एब्सोल्युटली ठीक है, पॉलिटिकल भर्तियां हमेशा होती हैं, ये एक सीरियस मसला है, इसके लिए आपको
अब सर पॉलिटिकल भर्तियों की बात, खानदानी होना, इसका मकसद ये है कि पॉलिटिकल भर्तियां एक तो वो हैं जैसे जरदारी साहब सुना यारों के यार हैं, वो अगर किसी ने उनके लिए अच्छा किया हो ही डजंट लेट इट गो, ही जस्ट उनको नवाजते हैं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक की कोई पोजीशन हो वो नवाजते हैं। मगर पीआईए डूब गई, आपकी जो ये अल्लाह भला करे हमारी स्टील मिल है डूब गई, बतेरे और इदारों का भी बड़ा गर्क हुआ। मैं तहसीलदार को, मैं समझ क्या तहसीलदार ही है ना, मगर मुझे पता चला है कि एक तहसीलदार के लिए भी दे हैव टू पे सो मच मनी फॉर दैट। मेरा कंसर्न ये है हु टेक्स द मनी एंड व्हाट इज दैट सफारशी सिस्टम, व्हाट इज दैट ब्राइब।
अब देखिए मैं आपको इसको इस तरह एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए दरख्त जितना भी बड़ा होता है ना उसका खाना रूट्स से आ रहा होता है, जड़ों से आ रहा होता है। सो जो भी फर्स्ट लेवल ऑफ इंटरेक्शन विद द पब्लिक है बेसिकली उस पे आपको बड़ा आदमी की सिफारिश ही से आ पाते हैं। सो इसको आप किसी भी महकमे की हम मिसाल ले लेते हैं, पुलिस के सिपाही से आप ले लें, कस्टम के सिपाही से आप ले लें, कस्टम के इंस्पेक्टर से आप ले लें, तो वहां से बात यूं शुरू होगी कि हमारा एक तो मुआशरा भी उस तरह का है कि मैंने अगर मेरे एक इलाके में कुछ वोट हैं ज्यादा हैं, मेरी असर और रसूख है और मैं वहां से किसी को जिता सकता हूं, तो हम किसी को वोट इसलिए थोड़ी देते हैं कि वो हमारा मुआशरा बेहतर करे, हम उसे कहते हैं कि जी देखें अगर ये काम होने वाला होता, अगर ये जायज काम होता तो फिर हम आपके पास थोड़ी आते। सो हम जिसको वोट देते हैं हम फिर उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इन रिटर्न हमें कुछ देगा। सो आपकी जो इस लेवल की जो तहसीलदार की पोस्ट भी, तहसीलदार की बहुत बड़ी पोस्ट है, तो तहसीलदार लेवल की जो पोस्ट है ये तो एज अ पॉलिटिकल ब्राइब दी जाती है कि अच्छा जी चलो आपके घर के किसी बच्चे को हम इन रिटर्न फॉर दिस हम चलें कोई अकोमोडेट कर लेंगे, सरकार की नौकरी में अकोमोडेट कर लेंगे। अब और फिर कुछ जब ये तो सिर्फ बनने के लिए, जब आप एक दफा बन जाते हैं तो फिर सारे कुछ जगहों में ज्यादा कमाई की जगह है। मैंने आपको पहले एक बात, एक दफा मैंने YouTube पे एक बात की थी और फिर लोगों ने मुझे जाहिर पता नहीं
बुरा भला कहना शुरू कर दिया होगा।
हाँ सच नहीं शायद सुनना चाहते। देखिए मैंने पहले पता नहीं आपके प्रोग्राम में कहा था या कहीं कहा था, मैंने जो 27-28 साल ब्यूरोक्रेसी में कस्टम्स में गुजारे, तो इसमें मैंने जनरल मुशर्रफ के 11 साल देखे, मैंने पीपल्स पार्टी के 2 टेन्योर्स देखे और मियां नवाज शरीफ साहब के भी 2 टेन्योर्स देखे। अब हमें और खास तौर पे कस्टम्स में और जिस तरह की आप बात कर रही हैं
सर, आपकी बात की कथा कलामी माफी, मैं तो आज सोच रही थी, मैं समझती थी जो कलेक्टर ऑफिसर पता नहीं 19वें 20वें ग्रेड चुनदा होगा। यार मैंने पाकिस्तान में 17 ग्रेड पे काम किया, मैं प्रिवेंशन भी छोड़ आई, लंबी छुट्टी लेके आई थी और उसके बाद मैं ना मुझे भी नहीं पता कहाँ से कहाँ मुझे ट्रांसफर कर दिया होगा। मगर वो जो मतलब मगर कस्टम ऑफिस और ये जो कलेक्टर्स होते हैं और ये जो पीओस होते हैं इनकी तो इनकम उनकी तो घर देख के हम तो पढ़ाने वालों के जो ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के मर जाते हैं। तो मैं तो समझती थी कि आप लोगों का ग्रेड बहुत बड़ा है जिस हिसाब से आप लोगों के घर होते हैं।
देखिए सरकारी घर तो खैर मैं आपको पहले मैं वो बात कंप्लीट कर
जी सर आप बात कीजिएगा, सॉरी मैंने रोका आपको।
नहीं नहीं नो प्रॉब्लम। सो इशू ये है कि सो हम जिस पोजीशन पे कस्टम्स में 17-18 पे 19 पे बैठे होते हैं, तो सबसे पहले जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो हम पे हमें सबसे पहले पता चलता है कि क्या होने लगा ना, और कस्टम जैसे महकमे में बाकियों को भी पता चलता है लेकिन आपको गवर्नमेंट का फौरन पता चल जाता है।
नई नातियां हो जाती
हैं, पर्टिकुलर सिफारिशें आती हैं कि जी एयरपोर्ट पे फलाने बंदे को लगा दें, इस जगह पे फलाने बंदे को। अब आपको पता होता है कि किस जगह पे कितनी कमाई है या आवाम को कितना तंग किया जा सकता है तो उससे कितना नोट कमाया जा सकता है। आपको अपने स्टाफ की रेपुटेशन भी पता होती है कि इनमें से कौन सा बंदा अच्छा आदमी है और कौन सा बंदा जो है वो लूटमार का चैंपियन है। तो आपको जो है सिफारिश आ रही होगी कि इसको इधर लगाना है, तो आपको एक मिनट में समझ आ जाती है और आपको खैर पहले से भी पता होता है कि किसका आदमी है। और ब्यूरोक्रेसी को आपने अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा पोलिटिसाइज कर दिया हुआ है। ये वो वाला एलिमेंट है जिसको पोलिटिसाइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक वो ब्यूरोक्रेट सरकार का मुलाजिम कानून का मुलाजिम रहेगा और आपके किसी पोलिटिकल पार्टी का मुलाजिम नहीं हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का या किसी शख्स का मुलाजिम हो गया तो आपकी जो अवाम को जो कानून की प्रोटेक्शन देनी है वो खत्म हो जाएगी। सो मैंने आपसे कहा ना कि गवर्नमेंट्स को हम बड़े आराम से कंपेयर कर सकते हैं, तो जैसे ही गवर्नमेंट्स आती थी तो हमें जिस गवर्नमेंट से फौरन आता है ना इस बंदे को इधर लगाना है तो आपको फौरन पता चल जाता है कि वो जहर है। और वो अकेला थोड़ी और जो पैसों का वॉल्यूम है जो आप बात कर रही हैं वो मैं आपको थोड़ा सा अंदाजा दे देता हूं। देखिए उस दौर में 16-17 ग्रेड पे जो होते थे हमारे लोग, आप एक से 1.5 करोड़ रुपया महीने की आपकी आमदन होती थी
होते थे।
तो अब वो सर वो सब वो अगर आपने किसी को लगा रहे हैं तो फिर आपसे उसकी कुछ एक्सपेक्टेशंस भी होती है ना, नहीं तो वो आप बहुत से आपके लोग नीचे खड़े हैं जो आपकी टांगे खींच के खुद उस पोजीशन पे आना चाहते हैं, तो आप उसमें से कुछ ना कुछ अपने ऊपर वालों को जिन्होंने आपको उस जगह पे रखा हुआ है उनको कुछ देते तो होंगे ना, क्योंकि जैसे ही आपकी ट्रांसफर होने लगती है तो फोन आ जाते हैं कि वो भाई ये क्या करने लगे उसको ट्रांसफर ये नहीं होगा या होगा या सो या सो 15-16 पे किसी जगह पे 1-1.5 करोड़ रुपया महीने का कोई इशू नहीं था। आजकल तो चीजें अरबा में है।
ओह माय गॉड, ये जो इसका मतलब है जो कहा गया कि बुज़दार साहब और जो गोगी के जरिए ये पैसे लेते थे, मतलब गोगी इट्स ऑन रिकॉर्ड सर, तो ये दुरुस्त था ना?
इस पे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, वो भी हट बीती है, खुद मेरे पे गुजरी है क्योंकि बेवकूफ सा आदमी हूं। मैं गुजरांवाला में सेल्स टैक्स में बैठा था, आपको दो छोटे छोटे एक्चुअल प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड एग्जांपल्स देता हूं। मैं गुजरांवाला सेल्स टैक्स में पोस्टेड था, मेरे पास एक लड़का आया अचानक ऐसे जाके बैठ गया। मेरी वो बलूचिस्तान वाली पॉलिसी थी, बलूचिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन का और तरीका है, पंजाब की और तरीका है, बल्कि ये भी इंटरेस्टिंग है, दिस विल एक्चुअली टेल यू हाउ इट वर्क्स। तो मेरी वो बलूचिस्तान वालों का जरा ओपन डोर पॉलिसी होती है, तो मैं जब गया हूं वहां पे तो मैं सिपाहियों का यार लोगों को मत रोका करो, जो मिलने आता है उसे आने दो। तो मेरे सिपाही और स्टाफ मुझे बड़ा नाराज था इस बात पे। तो फिर मैंने एक दिन स्टाफ को कहा, यार तुम्हें क्या तकलीफ है, मतलब मुझे प्रॉब्लम है ना, लोग जमा हो जाते हैं, मैं हर एक की बात सुन रहा हूँ, मेरे दफ्तर में अकेला कोई नहीं बैठा हुआ, पीछे वहां सोफा लगा हुआ है, उस पर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ यहाँ है, इसकी बात सुन रहा हूँ, इसका काम कर दिया, ये गया, दूसरा हाँ जी आप बताइए। सो मेरी कोई सीक्रेसी नहीं है कि जी मैं इससे, तो नहीं तो नॉर्मली वो तरीका होता ना कि साहब से ये अब आप मिलने जाएंगे, बाहर सिपाही ने पीछे पूरी लाइन को रोका हुआ, फिर जब वो निकलेगा तो नेक्स्ट की बारी आएगी। तो मैंने जब ये, तो मैंने सिपाहियों से पूछा या अपने स्टाफ से पूछा, आप नाला क्यों हैं मुझसे, वो कहते हैं कि साहब फिर हमारी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। और बात शायद उनकी ठीक थी कि अगर हम किसी को रोक ही नहीं सकते तो फिर हम इधर खड़े क्यों हैं। तो आपने बेसिकली हमें रिडंडेंट कर दिया। तो जरा एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके से चल रही होती है, जब आप उसमें आके एक अपनी लुच अलग से तुलते हैं तो आपको ज्यादा पसंदीदा शख्स नहीं रहते। खैर, एक तो ये वाले एस्पेक्ट में इससे आगे चलता हूं। तो वो इसी तरह मेरे दफ्तर में एक रश खप लगी हुई थी, मैं काम कर रहा था, सामने सोफा लगा हुआ था, एक लड़का जवान सा आके बैठ गया।
अच्छा,
थोड़ी देर में हुई जब उसकी बारी आई तो मैंने कहा जी आप बताइए। तो जाहिर और भी लोग आ गए थे, कहते नहीं सर आप फारिग हो जाएं तो फिर मैं बात करता हूं आपसे। मैंने कहा अच्छा चलें, नेक्स्ट हाँ जी आप बताइए। फिर घंटा गुजर गया, मैंने फिर कहा, मैंने कहा हाँ यार आप बताएं क्या इशू है। नहीं सर आप फारिग हो जाएं। मैंने कहा मेरे भाई मैं तो सारा दिन फारिग नहीं हूं भाई, इसी तरह लोग आते रहेंगे, मतलब तो वो अब क्या जैसे। नहीं सर वो कुछ प्राइवेट सी बात है। मैंने कहा अच्छा प्राइवेट सी बात है। मैंने सिपाही कहा, मैंने कहा बाकियों को भी कहा, मैंने कहा आप एक मिनट तशरीफ रखें मैं इनकी बात सुनूं। मैंने कहा जी आप फरमाइए। तो कहता सर मैंने शादी करनी है। मैं भाई आप तो ये तो सेल्स टैक्स का दफ्तर है, मैं शादी से आपकी मेरी क्या लेना देना। कहता सर वो बस मैंने आपका ड्रामा देखा था, मैं समझा कि आप बड़े अच्छे आदमी हैं, आप मेरी मदद कर देंगे, मेरी जान पे बनी हुई है जी, मैं मर जाऊंगा, मैं फाना होऊंगा, मेरे पास कोई उम्मीद नहीं है, मैं बस बड़े उम्मीद लेके आपके पास आया हूं, मेरी मदद करेंगे आप। मैं ओके बताइए क्या प्रॉब्लम है। कहता जी मुझे एक खातून पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूं, उनको मैं पसंद हूं। मैंने कहा आपकी कोई जात बरादरी का मसला, कोई मजहब के डिफरेंस, कोई फलाना, दोनों बालिग हैं? हाँ जी हम दोनों बालिग हैं, सब कुछ है, लेकिन सर मैं अभी गरीब आदमी हूं, जिंदगी में स्ट्रगल कर रहा हूं, तो उसके वालदैन उसकी कहीं और शादी कर रहे हैं, मैंने बड़ा अप्रोच किया, बड़ी मेहनत की है, लेकिन वो नहीं कर रहे हमारे शादी उसकी। सर हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, मैं मर जाऊंगा, तो अगर हम चाह रहे हैं कि कोर्ट में हम जाके मैरिज कर लें। मैं थोड़ा सा लिबरल आदमी भी हूं, मैंने कहा भाई अच्छा अगर आप दोनों बाले हैं कोई मसला भी नहीं है, तो और आप अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं तो फिर इसमें भी मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं सेल्स टैक्स के दफ्तर में कुछ नहीं कर सकता, आप जाइए मैजिस्ट्रेट के पास जाइए, वो 164 का बयान देते हैं कि आप दोनों बाले हैं अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं, तो फाइन। कहते सर ये बात तो ठीक है, लेकिन वो मसला ये है जी वो कोई भी मैजिस्ट्रेट हमारी शादी नहीं करता, वो कहते 6,000 रुपए दोगे तो शादी करेंगे। अच्छा मैंने कहा ये भाई अगर तेरे पास 6,000 रुपए भी नहीं है तो पहले
मतलब ये वाज इट अ फीस और व्हाट इट वाज?
नहीं रिश्वत। कहते जी वो 6,000 रुपए रिश्वत मांगते हैं, क्योंकि देखिए कानून ये कहता है। मैंने उसे कहा, मैंने कहा जी आप मैजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, क्योंकि अंग्रेज के जमाने से जो कानून है और अंग्रेज के दौर में 100 रुपए बड़ी बात होती थी। जो पाकिस्तान का कानून है वो ये कहता है कि अगर एक कपल जाके मैजिस्ट्रेट के सामने जो भी शादी करता है और सो मैजिस्ट्रेट आपका निकाह नहीं करवा सकता, लेकिन वो डॉक्यूमेंट कर लेता है कि आप दोनों अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं, ताकि बाद में आप पे कोई इस किस्म के इल्जाम ना हो कि लड़की को अगवा कर लिया, फिर आप निकाह खान के पास जाके निकाह रजिस्टर कर लेते हैं वो, लेकिन वो मैजिस्ट्रेट के सामने आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाती है कि आप अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ शादी करें। और अंग्रेज का कानून यह है कि इस इवेंट पे अंग्रेज बहादुर सरकार आपको 100 रुपए एज शादी की वो जो गिफ्ट होती है वो देती है। आज भी पाकिस्तान के कानून में शायद वो 100 रुपए बढ़ा दिए हों, लेकिन राइट अप टू 2007 या 2008 की जो मैं आपको बात बता रहा हूँ
उस सलामी देते हैं
100 रुपए ही थे। ठीक है
अच्छा वो मैं कथा कलामी तो अंग्रेज सरकार का था कि 100 रुपए उस जमाने में सलामी दी जाती थी शादी करने, मगर किस आदमी से 6,000 रुपए मांगे जा रहे थे,
रिश्वत मांगी जा रही थी। ठीक है जी। तो मैंने कहा यार तू झूठ बोलता है, ऐसे नहीं होता, मतलब तुझसे 6,000 रुपए कौन मांगेगा, मतलब मैजिस्ट्रेट ऐसे कैसे कर सकता है, वो बल्कि तुझे 100 रुपए उन्होंने सलामी देनी।
दूसरा मशवरा क्या दिया कि भाई 6,000 रुपया उसके पास था नहीं?
वो कहता है जी मेरे पास 6,000 रुपया था नहीं। मैंने कहा तो बेवकूफ आदमी फिर शादी क्यों कर रहा है, खुद तू भूखा मार रहा है, तो किसी और को भी अब भूखा मारेगा तो तू शादी ना कर। खैर वो तो मजाक अपनी जगह था। उसने कहा सर अगर आप ये समझते हैं, मेरी खैर जज्बाती हो गया मैं। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है यार, आप झूठ बोल रहे हो, मतलब 6,000 रुपए कैसे आपसे कोई रिश्वत मांग, आप वो आपको 100 रुपए देंगे। कहता सर ठीक है, अगर आप ये समझते हैं और आप इतने कायल हैं अपनी बात पे तो आप मुझे करवा के दिखा दें मुझसे, तो मैं तो आपसे 6,000 रुपए नहीं मांग रहा, या आप मुझे 6,000 रुपए दे देना फिर, या आप मेरी करवा दो शादी, आप आपके हैं ना कनेक्शन। चल मैं उसी वक्त फोन उठाया, मेरा बैचमेट SSP था, मैं DC को नहीं जानता था, शायद कोई एक आध बैच ऊपर नीचे होंगे। SSP को मैंने फोन किया, मैंने कहा DC कौन है, उसने कहा सर वो भाई को 14th Common का, मैंने कहा उनको फोन कर मैं सुबह आऊंगा, एक काम है मेरा। उसने कहा जी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सुबह चले जाएं, DC साहब की तरफ से मुझे आ गया जी आप सुबह आ जाएं। मैंने अपने कलेक्टर से छुट्टी ली, मैंने कहा सर मैं 2-3 घंटे लेट आऊंगा, मुझे थोड़ा सा काम है। ठीक, हम सुबह जी गुजरांवाला की कोर्ट में पहुंच गए, और मुझे एग्जैक्टली सॉरी मैं गलत आपको सन बताया, 2007 नहीं था, ये 1997 की बात। हम गुजरांवाला पहुंचे हैं, वहां की उस वक्त की जो कोर्ट होती थी गुजरांवाला की, जहां हम पे डिप्टी कमिश्नर साहब बैठते हैं, तो वहां पे 14 मैजिस्ट्रेट हुआ करते थे। तो मैं पहुंचा हूं DC साहब के दफ्तर में, जाहिर है वो मिले, चाय पिलाई, रीडर को बुलाया, जी आशीष साहब बताएं क्या बात है। मैंने कहा जी ये लड़का है मेरे सुबह दफ्तर आ गया था, इस तरह कल आया था, मैंने इसको बुला लिया है। खातून मैंने नहीं मिला था, वो कहीं मैं बाहरी बैठी हुई थी, इसकी जो भी इसके अरेंजमेंट थी, मैंने कहा उनको बाहरी रखो, जब हमारी अरेंजमेंट हो जाएगी तुम चले जाना, मैं तुम्हारी अरेंजमेंट करवा देती हूं। ठीक है जी, तो वो लड़का मेरे साथ साथ था, तो मैंने DC साहब को बताया कि जी इस तरह हुआ है, कहता है ये प्रॉब्लम है। कहते नहीं नहीं यार ये क्या बात है, दिस इज रिडिकुलस, मेरा रीडर आपके साथ जाएगा और ये अभी मैजिस्ट्रेट से करवा देते। मैं कुछ ठीक है, DC साहब कहते हैं मैं किसी मीटिंग में जा रहा हूं, आप तो जाइए इनके साथ, अभी हो जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने कहा जी ठीक, हम बड़े फखर से चल पड़े और वो पहले मैजिस्ट्रेट के पास पहुंचे हैं, तो मैजिस्ट्रेट साहब ने कहा जी कोई प्रॉब्लम नहीं, आशीष साहब आप आए हैं, आपके साथ ये लड़का आया है। हाँ जी, तो बताइए कि आप ऐसे करें ना, वो एक कागज पे एक हल्फ, वो एक बयान होता है हल्फिया के जी, मैं शनाख्ती कार्ड नंबर ये, वल्दी ये, फलाना और खातून ये, हम अपनी मर्जी से जो भी शादी करना चाह रहे हैं, तो वो आप फलाने वकील से लिखवा के लें। हमने कहा जी ठीक है, हम निकले, वो सामने वो वकीलों के जो कमरे बने होते हैं, कमरे पर गए, उसे कहा भाई ये लिखते हैं हमें। उसने कहा हाँ जी ठीक है 6,000 रुपए दे दें। मैंने कहा अरे ये तो अंग्रेजी लिखनी है ना, तो 6,000 रुपए तो क्यों मांग रहे, बेचारे के पास 6,000 रुपए नहीं है, मतलब उस वक्त 6,000 रुपए खैर थोड़े से वैल्यू भी हुआ करते थे। तो मैंने कहा यार अगर आप एक पेपर मुझे दे दें मैं खुद लिख लेता हूँ। उसने कहा जी ये नहीं पेपर, तो अंग्रेजी लिखनी थी, मुझे भी सारी दफाएं शफाएं पता थी, हूँ मैंने बयान लिख दिया। हम मैजिस्ट्रेट साहब के पास दोबारा पहुंचे, बोले सर ये एल एडिट ये अब आप कर दीजिए। मैजिस्ट्रेट साहब कहते हैं ये किसने लिखा है, ये तो उस वकील ने नहीं लिखा, उसके तो साइन ही नहीं है नीचे। मैंने कहा जी वो अपने वकील का क्या करना है, बहुत तो, मतलब आपको तो ये चाहिए ना, इसमें कोई कानूनी गलती है तो मुझे बता दीजिए मैं ठीक कर। कहते नहीं कानूनी गलती तो नहीं है, लेकिन देखें ये उसी से आपने लिखवाना है। मैं कहा भाई मतलब उसी से क्यों, वो 6,000 रुपए मांगता है, इस बेचारे के पास 6,000 नहीं है, ये तो ये कंप्लेन कर रहा है। ठीक है, और कहा जी ऐसे नहीं होता। अच्छा जी, उस मैजिस्ट्रेट ने टाल दिया हमें कि जी नहीं ये नहीं होगा। वो रीडर मुझे लेके फिर आया जी 14 के 14 मैजिस्ट्रेट, मैं भी जिद्दी आदमी हूं। दोपहर के 2:30 बज गए, मेरे कलेक्टर के 2 दफा फोन भी मुझे आए, दोपहर के 2:30 बज गए, जब तक मैंने 14th मैजिस्ट्रेट भी एग्जॉस्ट नहीं कर दिया था, मैं वापस नहीं आया, और सब के सब मैजिस्ट्रेट्स ने हमें इनकार कर दिया कि जब तक आप उस वकील से ये लिखवा के नहीं लाएंगे।
और वो एक स्पेसिफिक वकील था
जी, वो एक स्पेसिफिक वकील था।
अच्छा,
तो जो मैंने आपसे पहले गुजारिश की ना कि जो
वो 6,000 इस वकील के पास, इसका मतलब है कि ये मजिस्ट्रेट को जाना था, और ऊपर कहां तक जाना था ये 6,000।
अब देखिए ये तो एक इवेंट है ना, जब कोई आ जाए कि जी सिर्फ ये तो रेट होगा ना जी शादी करने का। हर चीज का एक रेट है इस मुल्क में, और वो ऑर्गेनाइज्ड है। मैं हमेशा जब पाकिस्तान में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात करता हूं तो देखिए हर चीज का एक रेट है, हर महकमे में हर चीज का एक रेट है। आपने कस्टम्स में स्पीड मनी का कॉन्सेप्ट सुना होगा ना जी, तो वो स्पीड मनी का मतलब ये है कि अगर आपने अपना जायज काम करवाना है लेकिन आप चाहते हैं कि आज की तारीख में हो जाए और आपको 70 चक्कर ना लगाने पड़े, तो आप कोई 10-20,000 रुपया दे देंगे तो हो जाएगा, नहीं तो मैं आपको कह दूंगा कि वो तो जी या तो साहब नहीं है इस वक्त, तो या आप फिर वो फलाना कागज ले आए, आप अपने अब्बा का निकाह नामा ले आइए। वो कहेगा भाई मेरा, मैंने कंटेनर इंपोर्ट किया है, इससे मेरे अब्बे का निकाल, लेकिन ये कानून में कहां लिखा है कि आपको कौन सी डॉक्यूमेंट चाहिए या नहीं। सो देर आर प्रिंसिपल्स फॉर डॉक्यूमेंटिंग और रिफॉर्म्स, सो दैट एवरीथिंग हैज टू बी डॉक्यूमेंटेड कि जी आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो स्पीड मनी का मतलब यह है कि आप जानबूझ के चीजों को काम नहीं करेंगे, लोगों का रोक देंगे, तो फिर पीपल वुड बी फोर्स टू गेट इवन लेजिटिमेट थिंग्स डन फ्रॉम यू। सो हर पोस्ट जो है उस पे कितनी महीने की कमाई है वो तकरीबन पूरा कैलकुलेटेड है,
उसी हिसाब से ब्राइब है टू गेट हायर्ड, उस पोजीशन के लिए हायर करने की भी कीमत वही है
जी। तो जो जब आप फरा गोगी वगैरह की बात करती हैं कि जी वो एक शख्स है कि जी इस जगह पे मैंने डिप्टी कमिश्नर लगना है, और मैंने आपको कहा ना कि जी आप बता सकते हैं, अभी मैं आपको बैठे बता सकता हूं कि पाकिस्तान में कस्टम्स की बता सकता हूं कि जी बलूचिस्तान में फलानी जगह पे महीने का इतना मिलेगा आपको। तो अब जब लोगों को पता होता है ना, वो रिसर्च करते हैं पहले कि यार अगर मैं यहां पर इस जगह पे लग जाऊं तो मुझे महीने का इतना मिलेगा, तो वो फिर उसकी बोली लग जाती है कि अगर मैं 6 महीने यहां रहूं और फर्ज करें ये मुझे 100 रुपए 6 महीने में मिलेंगे, तो वो कहता है कि जी अगर आप 20 रुपए मैं आपको देने को तैयार हूं, और उसकी फिर अरेंजमेंट्स हो सकती हैं, मैं आपको हर महीने 5 रुपए दे दिया करूंगा या ये 20 आप अपफ्रंट ले लें और अब आपने 6 महीने फिर मुझे यहां से हिलने नहीं देना, तो वो पॉलिटिकल आपके पीछे रहेगी फोर्स, अब आप 6 महीने वहां रहेंगे। अवाम की एक्सट्रैक्शन है ना जी, मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊं, मतलब ये किस लेवल पे है पाकिस्तान में, ये टोटली ऑर्गेनाइज्ड है। जो मैं बार बार कहता हूं कि इट्स नॉट अबाउट, हम गलत ढोल के पीछे भाग रहे होते हैं कि जी ये फलाने को चेंज कर दो तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। वो तमाम एमएनए एमपीए मिनिस्टर, पूरा आपका कल्चर इस तरह का बना हुआ है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, मैं इस्लामाबाद जा रहा था सीवीआर, हमें सुजुकी पोटोहार जीप में मिली हुई थी। अच्छा वो मैं निकला हूं तो बाय रोड ही हम चले जाया करते थे क्योंकि टीएडीए देना है तो सबसे चीपेस्ट वे ऑफ ट्रैवल ही है। तो मैं अपनी गाड़ी में बैठा हूं और मैं जा रहा हूं, अगले दिन सुबह इस्लामाबाद में मीटिंग है, मैं पहुंचा हूं कोई गुजरात से थोड़ा सा आगे पहुंचा हुआ, तो मेरी गाड़ी का अभी पेट्रोल खत्म हो रहा है, ई के करीब पहुंच रही है सुई, तो मैंने कहा यार चलो इस शहर से जो जगह मैं से पेट्रोल भरवा लेता हूं गाड़ी। मैं गाड़ी खड़ी की है अभी सर उसमें, और मैंने उसके पेट्रोल डाल दे, सर सरकारी नंबर प्लेट की गाड़ी भी है, उसने मुझे पेट्रोल डाल दिया। जब पेट्रोल डाला है तो मुझे कहता है कि जी हमें वो सर रिसीट ले लेते हैं, हमें रिइंबर्समेंट हो जानी है, मेरा जाती तो है नहीं। मैं कह मैंने देखा कितना पेट्रोल डाला है, तो उसमें 44 लीटर, मुझे आज तक अच्छी तरह याद है, उसने 44 लीटर पेट्रोल मेरी गाड़ी में डाल दिया। मैं चूंकि खड़ूस टाइप का आदमी हूं तो मैंने तो नई गाड़ी मिली थी, मैंने उसकी लॉग बुक भी पूरी पढ़ी थी, उसका तेल कब चेंज करते हैं पानी कब चेंज करते हैं, तो जो टोटल सुजुकी पोटोहार की जो टैंकी की कैपेसिटी है वो 40 लीटर की है, और यकीनन इसमें 5-6 लीटर अभी था क्योंकि वो अभी सुई ई को टच भी नहीं हो रही थी, तो मैंने रोक दिया था। अब 6 लीटर पहले से था इसमें, चले 4 मान लेते हैं, इस पे 44 लीटर तूने और डाल दिया है, इसकी टैंकी में 40 लीटर आता है, तो ये 48 लीटर इसकी टैंकी में कैसे आ गया। मैंने कहा भाई ये आपने कैसे 44 लीटर डाल दिए, ठीक है। तो वो कहता है कि जी आपके सामने डाला है। मैं कह यार आप रसीद दे दें मुझे, कहता जी मैं रसीद दे देता हूं। उसने मुझे रसीद दे दी, 44 लीटर लिख दिया, मेरी गाड़ी का नंबर भी लिखा हुआ। अच्छा अब मैं उससे बहस करता हूं तो वो आगे से मुझे गालियां देता है, लड़ने को पड़ता है, आप क्या करें। मैं वहां से गाड़ी स्टार्ट की, मेरे पास एविडेंस तो आ गई थी, सीधा मैं डिप्टी कमिश्नर रास्ते में मुझे दफ्तर नजर आया, मैं डीसी के दफ्तर पे गाड़ी मोड़ी थी चला गया। मैं कह साहब कोई सीनियर साहब थे इंट्रोड्यूस कराया जी मैं, हाँ जी। मैं कह साहब ये एक पर्ची है आपके पास लेके आया हूं, बाहर मेरी गाड़ी खड़ी है, ये सुजुकी पोटो आ रहा है, इसका ये नंबर है, इसमें 44 लीटर पेट्रोल डाल गया है, अब आप मुझे ये बताइए कि आप वेट्स एंड मेजर्स के जिम्मेदार डिप्टी कमिश्नर साहब होता है डिस्ट्रिक्ट में कि यहां पर वजन लोग ठीक कर रहे हैं, यहां पे नाप तोल का आशारी निजाम ठीक है, ये डिप्टी कमिश्नर की जिम्मेदारी है, आपका ये पेट्रोल पंप का जो मीटर है ये ठीक नहीं, ठीक है। अच्छा उन्होंने मुझे बिठाया, चाय पिलाई, खूब हंसे, कहते हैं यार राशिद साहब अब आप भी ये सारी बातें समझते ही हैं, अब जहर आपको पता है हमें हमें साल के पेट्रोल का बजट कितना है, तो जहर वो तो पहले 1 महीने में खत्म हो जाता है, उसके बाद 11 महीने जितनी हमारी पुलिस की गाड़ियां चल रही हैं, हमारी गाड़ियां चल रही हैं जिले इंतजामिया की, वो सारी गाड़ियां जो है वो ठीक है। तो दिस इज दिस इज द वे इट इज एक्चुअली यू डोंट वॉन्ट टू पे. देखिये मैं हमेशा जो कहता हूं ना, इट्स एन ऑनेस्ट गवर्नमेंट दैट कैन अफोर्ड एन ऑनेस्ट ब्यूरोक्रेसी. ऑनेस्ट ब्यूरोक्रेट बहुत खतरनाक आदमी होता है, उसको कोई अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि वो किसी की सुनता नहीं. दैट्स द प्रॉब्लम. सो अंग्रेज ने के दौर से ये डिसाइड हो गया हुआ था कि आप यू विल मेक पीपल लिव ऑफ द ग्राउंड. सो अकबल बंदोबस्त पे आप अपना बंदोबस्त कर लें. आपको पेट्रोल के बजट नहीं दिए जाएंगे, आपको गाड़ियों के बजट नहीं दिए जाएंगे, आपने खुद ही अरेंजमेंट कर लें कोई. अब जब मैं वो अरेंजमेंट्स करूंगा ना, तो जब मैं अपनी गाड़ी के लिए अरेंजमेंट मैंने खुद ही करनी है और एक दफा मैं मार्केट में आ ही गया हूं, तो फिर मैं अपने घर की गाड़ी के लिए अरेंजमेंट करूंगा, फिर मैं अपने यारों दोस्तों की गाड़ी की भी अरेंजमेंट करूंगा. तो ये जब तक आप स्ट्रक्चरली उस मुल्क को ठीक नहीं करेंगे. एक तो पेट्रोल की कीमत आसमान से बातें कर रही होगी, उस वक्त भी आसमान से ही बातें कर रही थी एक तरह से, अगर आप तनख्वाहदार हैं तो. और फिर उस पर आपको कीमत भी कम मिलती है, फिर उसके उस क्वांटिटी भी वो कम डालता है.
यानी हड्डों के बीच में बेईमानी, चाहे वो ब्यूरोक्रेट है चाहे वो मेरी इज्जत का मुहाफिज है, मतलब हर एक की नस नस में डीएनए के बीच में बेईमानी फंसी हुई है और ये उनकी मजबूरी है.
मजबूरी भी है, हमारा ख्याल भी. देखें मजबूरी मैं सिर्फ नहीं मानता, मजबूरी के बहुत से तरीके हो सकते हैं इन चीजों को सॉल्व करने के. लेकिन हमारा मुआशरा एक ऐसी जगह पर आ गया हुआ है कि दे डोंट रियली केयर. वो हर शख्स अपना चाहता है कि मेरा बच्चा इस पोजीशन पे लग जाए, उसको इससे कोई गर्ज नहीं है कि जी ये मैं ठीक काम करेगा या ये गलत काम करेगा. ये तो हमारी लिप सर्विस है ना, हिपोक्रेसी है कि जी फलाना चोर है. आप मुझे सिर्फ दें, मैं सबसे पहले सबसे उससे बड़ा चोर बन के आपको साबित करके दिखाऊंगा.
सर आपने हिपोक्रेसी की बात की, मैं एक इंटरव्यू आगे करना है आज के प्रोग्राम में बताने लगी हूँ. आपको याद होगा नताशा, एक लड़की जिसका कराची में एक्सीडेंट हुआ था और रेंज रोवर वो चला रही थी और पहला इसने टक्कर मारी इस मोटरसाइकिल वाले से, बाप और बेटी की डेथ हो गई थी, कुछ लोग और जख्मी भी हुए थे. अब कहा जाता है कि जी ये वो जो लड़की जिसका एक्सीडेंट हुआ था, वो जो उसके साथ उसका बाप था या उसका कजन के फ्रेंड से मेरी बात हुई यहीं टोरंटो में. और सर ये जो व्हाट्सएप आपका है और ये जो सोशल मीडिया है, मेरी फसाद की और झूठ की जड़ है. किसी ने कहा जी खून बहा, क्या उसको कहते हैं, खून बहा मिल गया उनको और लड़की के ड्रीम्स थे. चलो जी आपको पता है एक पाई का नहीं मिला पैसा, एक पाई का पैसा नहीं लिया. इट्स ओनली द गर्ल हैज अ पोजीशन. और मेरा ख्याल है किसी एक आदमी ने जिसने उसको कहा था कि शी वाज इन द ड्रग्स, शायद वही पुलिस ऑफिसर भी मर जाए, वही डॉक्टर भी मर जाए या मार दिया जाए. मगर अगेन जैसा आपने कहा कि यहाँ आपका जो ब्यूरोक्रेट है वो पैसा भी लेता है, वो दोस्तों का साथ भी रखता है, मगर आम आदमी के लिए इंसाफ नहीं है. आम आवाम चूंटियों की मानिंद है. इज इट राइट?
इट्स एब्सोल्युटली राइट. इसमें कोई किसी को कोई इभाम नहीं होना चाहिए. हमारे मैं जब नया नया असिस्टेंट कलेक्टर गया तो मेरे डिप्टी कलेक्टर साहब जो थे उस वक्त 19 में डीसी हुआ करते थे, हमीद खान साहब, बड़े स्ट्रीट वाइज टाइप के आदमी थे. तो मैं चूंकि मैंने कहा ना मुझमें थोड़ी सी एक फौजी रग थी और उस वक्त बहुत ज्यादा थी, तो मैं वही फौजी अफसर वाला मेरा जहन था. तो उन्होंने मुझे कहा, कहते हैं यार तू काम डाउन हो जा. मैंने कहा अच्छा जी बताइए. कहते हैं कि जी उन्होंने मुझे आज तक याद है, उन्होंने मुझे बात बताई. कहते हैं कि एक अंधा रात को जंगल में लालटेन लेके जा रहा था. कहते हैं तो उसको कोई आदमी मिला और उसने कहा कि अंधे तुझे दिन को नजर नहीं आता, तू रात को ये लालटेन लेके तू लालटेन लेके क्यों जंगल में?
दूसरे को तो नजर आऊंगा ना.
हाँ जी. तो उसने कहा कि जी ये लालटेन इसलिए नहीं है कि जी मैं किसी का कुछ कर सकता हूँ, मेरी तो आंखें नहीं है, ये इसलिए है कि कोई अंधा कोई आंखों वाला मुझसे ना टकरा सके. तो उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी का वाहिद फायदा ये है कि शायद किसी वक्त पे आपको इंसाफ मिल जाए।
ये सर बहुत अच्छी एग्जांपल आपने दी, बहुत शुक्रिया आशिर अजीम साहब। आज बस दिल चाह रहा था थोड़ा सा हट के पाकिस्तान की, यानी सिस्टम को अगर चेंज करना है ना तो आपको फिर आपको सबसे पहले अपनी हायरिंग अथॉरिटीज जो इस ब्यूरोक्रेसी को हायर करते हैं, अगर आपने आम इंसाफ को देना है, हम कहने को हम वी आर ऑल हिपोक्रेट्स, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कह के हम बड़ा फख्र महसूस करते हैं, मगर हम रिश्वत आम है उस सिस्टम में, झूठ आम है उस सिस्टम में, और ये ब्यूरोक्रेट जो हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं। तो बहर अल्लाह मालिक अल्लाह हाफिज़।
मैं आपके एक पांच मिनट और लेना चाहता हूँ क्योंकि ये फिर बात निकल जाएगी। मैं मुझे क्या तकलीफ हुई थी जब मैंने कस्टम्स रिफॉर्म्स बनाने शुरू किए थे, मैंने दो इवेंट्स देखे जो मुझे बहुत बुरी तरह चुभे थे अंदर। मैं कोई ज्यादा मैं कोई दीनी मजहबी जन्नत दोजख वाला आदमी नहीं, लेकिन मुझे प्रैक्टिकल दुनिया में इंसान के साथ जुल्म होते देख के मुझे पता नहीं क्यों तकलीफ होती। मैं ऐसे ही मुफ्त में अंडरडॉग के साथ खड़ा हो जाता। मैं इस्लामाबाद में था, नया नया अभी हम नई नई जवान हो रहे थे, मेरा एक दोस्त हुआ करता था शौकत, तो शौकत एक किसी एक डिपार्टमेंट में था, एक किसमें था कोई इरिगेशन इंजीनियर था तो किसी एक डिपार्टमेंट में था। तो मैं हम दोनों रात को जाया करते थे पूल खेलने इस्लामाबाद में उस वक्त। तो मैं शाम को उसकी तरफ पहुंचा, चल चले, तो मुझे कहता है यार एक मिनट, वो मेरा मिनिस्टर आया हुआ है, मैंने उससे मिलना है, मैंने अपनी कहीं पोस्टिंग की कोई बात है, तो उसकी तरफ से होते हुए चलेंगे। मैं कहता चल, गाड़ी में बैठे हुए हम उधर पहुंचे हैं ब्लू एरिया में, मतलब मैंने अपनी आंखों से जो देखा है। मैंने कहा ना कि दो तीन इवेंट्स ने मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई, जिसके बाद मैंने ये सोचा कि यार मैं अगर
इसके बाद मैंने सोचा कि मैं फिल्म मालिक बनाऊं और आप अपने
नहीं, अब मालिक तो चले एक फिल्म है ना जी, कि प्रैक्टिकली कुछ कर जाऊं, मतलब कोई चेंज लाऊं, क्योंकि ये जो गंदा पैसा है ना इसका आपने अभी गंदा इस्तेमाल नहीं देखा, मतलब मैंने इसका गंदा इस्तेमाल देखा है। तो वो जब आप देखते हैं तो आपको बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि देखिए ना ऐसे तो कहना कि जी फलाने के पास पैसा आ गया, चलें आप कहते हैं चलो यार उसके पास अच्छी गाड़ी आ गई होगी ना, लेकिन ऐसा नहीं है, उससे फिर जो जुल्म होता है वो आपने नहीं देखा। तो ब्लू एरिया पे जी हम रात का टाइम था, हम रुक गए वहीं जहां उसको पता था कोई जगह थी, नीचे कोई दुकानें थी, ऊपर कोई फ्लैट टाइप का स्ट्रक्चर था। हम जी ऊपर पहुंचे, वो उसको रास्ता पता था, हम जब ऊपर पहुंचे हैं तो एक ऊपर अपार्टमेंट थी कोई और एक दरवाजा खुला, उसने नॉक किया, तो अंदर यही जो हमारे टिपिकल लट्ठे की शलवार कमीज पहने हुए और बड़े बड़े ये होते हैं। सो उस कमरे में इट वॉज अ रूम लाइक दिस, इट वॉज अ लार्ज रूम, इट वॉज अ गुड फर्निश्ड अपार्टमेंट, उसमें कोई छह आठ आदमी इसी तरह लट्ठे के शलवार कमीज वाले थे, तीन चार उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट थे पंजाब के और तीन चार आपकी नेशनल असेंबली के मेम्बर्स थे, और वो वहां बैठे हुए थे, उसमें मिनिस्टर्स भी थे क्योंकि असेंबली का इजलास हो रहा था। तो कोने में, मतलब ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं आज तक मुझे इस बात पे तकलीफ होती, कोने में एक छोटी सी लड़की होगी बेचारी, तो 17-18 साल की होगी, वो बैठी सिर्फ अपना सारी उंगलियां झुका के अपने नाखूनों से कंटिन्यूसली खेल रही थी। शी वॉज सिटिंग इन अ कॉर्नर ऑन अ चेयर एंड शी वॉज एब्सोल्युटली नेकेड, आई हैव सीन इट विद माई ओन आईज। और ये जो बैठे डींगे मार रहे थे कि आज हमने असेंबली में ये किया और आज हमने असेंबली में वो किया, और सामने जो बोतलें खुली हुई थी, और उसके बाद हर थोड़ी देर में इनमें से कोई उठता था और उस लड़की को साइड के किसी कमरे में ले जाता था और वापस लाते थे। देखिए, जो आप इंसानियत की तजहीक करते हैं ना, जिस मुल्क में कानून नहीं रह जाता, और उसकी पहली स्टेप करप्शन है, क्योंकि वो जो जुर्म है ना जी, उस जुर्म से आपके बाकी तमाम जरायम वो लेते हैं। आपने आप अपने घर में डोमेस्टिक सर्वेंट के साथ क्या करते हैं, मतलब ये बात बड़ी मशहूर थी जिसको नहीं पता कि जी उस अभी के दौरों का मुझे नहीं पता, अभी भी ऐसे ही होगा कि जिस दौर में असेंबली का सेशन ऑन होता था तो लाहौर से फ्लाइटें भरी भरी लड़कियों की आया करती थी, ठीक है। तो आप क्या कर, मैं आप ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हैं जी, तो इंसान का अगर आपका दिल है ना जी और आपको तकलीफ होने की आप में कैपेसिटी है, तो आपको गुस्सा आता है और आप कहते हैं कि यार मैं कुछ किसी की आवाज शायद बन जाऊं, कोई मैं चेंज ले आऊं, फिर आखिर में आप तंग आ जाते हो, आप कहते हो यार कम से कम अपने बच्चों बच्चियों को फिर मैं यहां नहीं छोड़ सकता। अच्छा जी, तो आपने तो जो करना है आप करेंगे, तो क्या पूछनी है आरफा जी?
वेरी सैड सर। मैं आखिरी वाक्य जो है वाकई बहुत दुख है, यहाँ पर जब जिक्र होते हैं वो मैं माजरत के साथ सर, खुदा की कसम मेरी कोई पार्टी नहीं, वो किसी ने एक ने पैगाम दिया वो बाजी आरफा बड़ी है वो आराम नाल पर फेवर कर दिया वो किसी नाल। मैं ये कहती हूँ आपके रेड लाइट एरिया में या जो ये जो क्या हीरा मंडी ही कहा जाता है, वहां पर जो बच्चियां हैं वो डेरों की हैं सारों की। आप एक टेरियन वाइट का जिक्र करते हैं, आपका तो बंदा करप्ट, बंदा बंदा तो आपका करप्ट है, और इस्लाम में तो कतन अलाउड नहीं। हम गोरे के बारे में 100 दफा बात कर लेते हैं, वो हिपोक्रेट नहीं है, वो गलत करते हैं तो वो बताते हैं कि हाँ जी मैं डेटिंग करके आया, और इस्लाम इज डजंट अलाउ दिस।
आपको लीगली डिक्लेयर करना अलाउड है ना कि जी हाँ, अब क्या करें ना जी, वही मैं कह रहा हूँ कि हम इम्प्रूव नहीं किया हमने वक्त के साथ साथ।
अशर अजीम साहब बहुत शुक्रिया सर आपका, मैं सिर्फ इस सिस्टम से उठाना चाहती हूँ आपके करप्ट, कौन करप्ट नहीं है, हायर करने वाले पॉलिटिशियंस आपके करप्ट हैं, दे ऑल टेक मनी फॉर, और मेरे नोटिस में भी ये चीजें नहीं थी, ये तमाम की तमाम, क्योंकि एक प्रोग्राम ऑन द वे है जिसको हम प्रूफ्स के साथ लेके आने लगे हैं कि कहाँ कहाँ कितना पैसा दिया जाता है। बहरहाल आशा साहब का बहुत शुक्रिया, मगर आशा भाई मैं आखिर में कंक्लूड यहां से करती हूँ। When I came to Canada, I was 31-32 years of age. आप यकीन कीजिएगा उसके बाद मेरा बेटा मेरी जिंदगी में, मेरी और मुजफ्फर की जिंदगी में हमें 14 साल के बाद मेरा बेटा मिला। 2019 से पहले आई यूज टू गो एवरी ईयर इन पाकिस्तान, और खुदा की कसम मैं पाकिस्तान की एक खूबसूरत बात आपको बताने लगी हूं। टिल माई एज 31 आई नेवर हैड टू ब्राइब एनीबडी, चाहे वो कोई काम, साहिवाल में यूनाइटेड कंप्यूटर कॉलेज, मुजफ्फर अली, आरफा मुजफ्फर, हमें कभी किसी को पैसा नहीं देना पड़ा था। मैं पाकिस्तान हर साल गई हूं, आप यकीन कीजिएगा मेरा खुदा की कसम कई जगहों पे टेलीफोन भी रहा, आई ऑलवेज फाउंड गुड पीपल अराउंड मी, मगर अब तो मुझे लगता है बस पता नहीं हर चीज ही बिल्कुल ही बिगड़ के रह गई है, और हमारे लीडर्स को देखते हुए अवाम बेचारे भी बेबस है, मजबूर है।
नो डाउट, देखिए मैं जब अभी कनाडा आया हूँ तो मुझे बहुत अच्छे अच्छे पाकिस्तानी मिले, ऑनेस्टली पीपल, मैं आज भी कभी कॉस्को में मिल जाते हैं, कभी कहीं शॉपिंग करते हुए लोग मिल जाते हैं, दे आर ग्रेट पीपल, राइट। बट वही मैं कहता हूं कि जी इंडिविजुअल लेवल पे हम और तरह रिएक्ट करते हैं, अगर एट अ नेशनल लेवल वी डोंट हैव अ सिस्टम, हम सब उसमें
ये तब्दीली कौन ला सकता है, क्विक एक मिनट में बता दें, इस पूरे के पूरे सिस्टम को क्लीन अप तो नहीं किया जा सकता, आई डाउट इट वेरी मच।
बिल्कुल किया जा सकता है, 2 साल सिर्फ भाई को दे दें, मैं भाई को दे दें, मुझे तो एब्सोल्यूट जीरो शौक है, आई वोंट इवन डू इट, बट यू नो इफ यू हैव द अथॉरिटी टू डू इट, आई नो एग्जैक्टली द ब्लू प्रिंट, कैसे नहीं ठीक किया जा सकता यार, ये कोई बात है।
वो इमरान खान भी यही कहते थे, वो अल्टीमेटली खुद बेचारे उसी में फंस गए।
मैं तो आपको इमरान खान साहब तो ये कहते थे ना 90 दिन में हो जाएगा, मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि जी ये 180 डेज में आपको टेबल बना के बता सकता हूँ कि सबसे पहला स्टेप ये होगा, सेकंड ये होगा, थर्ड ये होगा, फोर्थ ये होगा, और जैसे ही आप वो देखेंगे आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि वाकई अगर ये स्टेप्स हो गए तो ये हो भी जाएगा।
सर मेरी भी पंच लाइन ले लें, मेरी भी फिर पंच लाइन ले लें, फिर इस पॉलिटिशियन ने और इस एस्टेब्लिशमेंट ने आपको तो कभी पाकिस्तान में एंटर होने नहीं देना, क्योंकि तुझी जो ना दे पेट से लत मारू वो।
देखिए अगर ये आप नहीं करेंगे, आप मुझे आज भी वो उस बच्ची की शक्ल याद।
आई नो सर।
देखिए आप वेस्ट में बातें करते हैं ना कि जी ये कि जी वेस्ट बड़ा नंगा है, तो फलाना है, तो ये है, तो वो है, इनके मोरालिटी नहीं है यार, प्लीज आप क्या बातें कर रहे हो।
बदबूदार पॉलिटिशियन है आपका अपना। बहुत शुक्रिया सर आशर अजीम साहब, आज हम यही बात करना चाहते थे। बड़ा आसान है किसी के बारे में बात कर लेना, मगर तहकीक जरूर कर लिया कीजिएगा। आशरा अजीम ने जो ये जिक्र किया, दीज आर वेरी कॉमन थिंग्स इन पाकिस्तान, और आपका वडेरा, आपका पॉलिटिशियन इज एडिक्टेड टू ऑल दीज थिंग्स, आपका ब्यूरोक्रेट इज एडिक्टेड टू ऑल दीज थिंग्स। अब इजाजत दीजिएगा, गेट रेडी फॉर द न्यूज, इंशाल्लाह अगले ट्यूजडे को आपकी फिर मुलाकात कराएंगे जनाब आशरा अजीम से। तब तक नहीं, मैं कल भी आऊंगी, खुदा हाफिज। मैं क्या तेरे को
दांतों का कोई भी मसला हो या करानी हो डेंटल क्लीनिंग, डॉक्टर फयाज एंड एसोसिएट्स आपकी पहली चॉइस। पैराडोंटिक्स, ऑर्थोडोंटिक्स, डेंटल इम्प्लांट, कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री एंड मच मोर। वार्म एंड फ्रेंडली एटमोस्फियर जहां